ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करने को तैयार है, और वो है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कश्मीर पर किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है।
हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।
श्री जायसवाल ने कहा कि आगे भी इसी तरह आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने यह बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही।
9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आंकड़ों को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है।
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की।
आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बौखलाए दुश्मन ने आदमपुर एयरबेस पर हमला करने का प्रयास किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि मैं यहां वीरों के दर्शन के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने यात्री विमानों को ढाल बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और सिर्फ 20 से 25 मिनट के भीतर सीमा पार के ठिकानों पर हमला करके ये दिखाया है कि आधुनिक तकनीक से लैस एक पेशेवर बल ऐसा कर सकता है। रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने 70 देशों को ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने नए युग के युद्ध में सैन्य श्रेष्ठता के माध्यम से प्रदर्शित की गई देश की शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल राणा ने पुष्टि किए गए आतंकी लक्ष्यों के चयन के लिए विस्तृत योजना प्रक्रिया के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गहन अभियान के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत, सटीक और त्वरित प्रतिक्रिया पर भी प्रकाश डाला। महानिदेशक राणा ने विरोधी द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता पर इसके प्रभावों का विश्वसनीय रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा के नाम का यह अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन तथा भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे। यह अभियान 23 मई तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रू केलर जंगल इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार श्रीनगर को बताया कि मारे गए आतंकवादी लश्कर ए तैयबा या TRF गुट के हो सकते हैं। इनकी पहचान की जा रही है। देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया है कि रणनीतिक सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इससे भारत एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बन गया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पुदुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पिछले साल जुलाई में लागू हुए थे। बैठक में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पूर्वोत्तर राज्यों को देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। नई दिल्ली में गारो, खासी और जैंतिया हिल्स क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेघालय के स्व सहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत में श्री धनखड़ ने कहा कि मेघालय के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 13% की वृद्धि हुई है। उन्होंने लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत हुई प्रगति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, खनन, IT, सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में अपार प्रतिभा और संभावनाएं हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि महिलाएं आगे आती हैं तो संतुलित आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों के लोगों ने कल रात एथेनॉल से बनी शराब पी ली थी। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच 2 आबकारी अधिकारियों, 1 पुलिस उपाधीक्षक और 1 थाना प्रमुख को निलंबित कर दिया गया है। अब तक सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के 1 सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। उधर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हादसे पर मुख्यमंत्री की आलोचना की है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर जुलाई 2019 के बाद से अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 3.16% रही, जो मार्च में 3.34% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.92% और शहरी क्षेत्रों में 3.36% की मुद्रास्फीति दर्ज की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि 12वीं कक्षा के परिणामों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CBSE की 12वीं और 10वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम छात्रों के संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिचायक हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विरोधी सशस्त्र गुटों के बीच हिंसक झड़पें होने की खबर है। ये झड़पें प्रेसिडेंसी काउंसिल से संबंधित सहायता विभाग के प्रमुख अब्दुल गनी अल किकली की मौत की खबर आने के बाद शुरू हुई हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने झड़पों के बाद पूरी सतर्कता बरते जाने की घोषणा की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 36 स्वर्ण, 28 रजत और 25 कांस्य पदकों के साथ कुल 89 पदक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। आज राजस्थान ने लड़कों की 30 किलोमीटर साइकिलिंग में सभी पदक जीते। राम अवतार ने स्वर्ण, महादेव ने रजत और महावीर ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों की 20 किलोमीटर साइकिलिंग में राजस्थान की मंजू चौधरी ने स्वर्ण और राजस्थान की ही रुक्मणी ने कांस्य पदक अपने नाम किए। महाराष्ट्र की जुल गंजम ने रजत पदक जीता। बैडमिंटन में लड़कियों की सिंगल्स स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की तनु चंद्रा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आज जिम्नास्टिक स्पर्धाएं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।